पहला सैमुएल अध्याय 26। हम अपनी बाइबलों में से पहला सैमुएल खोलें और अंतिम 6 अध्यायों का अध्ययन शुरू करें। ज़िप का जंगल हेब्रोन और मृत समुद्र के बीच में है, एक बहुत बड़ा अनुपजाऊ क्षेत्र। अध्याय 26 पद 1 से लेकर पद 6 तक में। फिर जिपी लोग गिबा में शौल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शौल उठकर इसराइल के 3,000 छटे हुए योदा संग लिए हुए गया कि दाऊद को ज़िप के जंगल में खोजे। और शौल ने अपनी छावनी मार के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा। और उसने ये जान लिया कि शौल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शौल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शौल पड़ा था। वो जंगल का क्षेत्र ऐसा था जहां आप छिप सकते हैं और बिना किसी को दिखे सब पर नजर डाल सकते थे। और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शौल अपना सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शौल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूया के पुत्र योआब का भाई अबिशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शौल के पास कौन चलेगा? अबिशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। एक बार फिर, जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूं, मैं दाऊद की प्रशंसा करता हूं। मैं उसके साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं उसकी निडरता की प्रशंसा करता हूं। यहां शौल उसको मारने आया है और इसलिए दाऊद उसकी छावनी को देख रहा है। वो देखता है कि शौल कहां लेटा है। वो इतना निडर है कि वो शौल की छावनी में रात को चोरों की तरह जाना चाहता है, बजाय इसके कि दूसरी दिशा में भागकर अपने और शौल के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए। उसके पास दुस्साहस की आत्मा है और वो कहता है, आज रात मेरे साथ उस छावनी में कौन चलेगा? अबिशै ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अध्याय 26 पद 7 से लेकर पद 9 तक में। सो दाऊद और अबिशै रातों रात उन लोगों के पास गए और वे सब गहरी नींद में सो रहे थे और क्या देखते हैं कि शौल झाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिराने भूमि पर गड़ा है और अबनेर और योदा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबिशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। दाऊद देख, वो वहां लेटा हुआ है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदते हुए भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अबिशै से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? परमेश्वर के अभिषिक्त के लिए दाऊद के मन में जो सम्मान है, उसके लिए मैं दाऊद को बहुत आदर देता हूं। शौल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ गया था, परंतु दाऊद के मन में उसके लिए अब भी बड़ा आदर था, क्योंकि दाऊद ये मानता था कि एक समय शौल परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। इस कारण दाऊद उसे छूने से मना कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में कहा है पहला इतिहास 16 के 22 में, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त सेवकों के चारों ओर सच में सुरक्षा का घेरा बना रखा है, जो कि सेवकाई का सिर्फ एक प्रकार का लाभ है। सेवकाई में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ये केवल चकाचौंध और उत्तेजना और नाटक वो रोमांचक का अनुभव नहीं है। सेवकाई में दिल का दर्द और कठिन अनुभव बहुत होते हैं। लोगों के साथ बर्ताव या व्यवहार हमेशा दुनिया में आसान काम नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें रास्ता नहीं सूझता और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या कहें। आप घबरा जाते हैं, आप अचूक नहीं हैं, आप बहुत गलतियां कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन आपको एक लाभ यह है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब मैं यहां परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खड़ा हूं, तो मैं अकेला नहीं खड़ा हूं, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। ये जानना कि परमेश्वर की सुरक्षा का सामर्थ आपके जीवन के ऊपर और आपके जीवन के चारों ओर है, बहुत अद्भुत बात है। हमारे यहां बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वे कलीसिया का संचालन मुझसे अच्छा कर सकते हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं जानता कि कलीसिया को कैसे चलाते हैं, और मैं कलीसिया के अच्छे प्रबंधन का दिखावा भी नहीं करता हूं। मैं यथासंभव सही प्रयास करता हूं कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करूं, परंतु यहां कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि वे परमेश्वर के बराबर हैं, अर्थात वे मुझे आज्ञा दे सकते हैं, वे चाहते हैं कि मैं उनके स्वरूप हो जाऊं। मेरी पत्नी ने सालों साल मुझे अपने स्वभाव में ढलने की कोशिश की। आखिर एक दिन मैंने कहा, प्रिय, तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम्हारे मन में पति की जो छवि है, मैं उसके स्वरूप नहीं ढल सकता, मैं तो अपने प्रभु के स्वरूप हो जाना चाहता हूं। अभी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया है कि मुझे जो होना है उसमें आप और प्रभु एक ही विचार रखते हैं। अंत में मेरी पत्नी ने मुझे अपनी मनोइच्छा के स्वरूप में ढलने का प्रयास त्याग ही दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आराधना को किस प्रकार से चलाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए आदि। ये एक तरह का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब एक इंसान आलोचना करना आरंभ करता है, तब ये बढ़ती जाती है और यहां तक बढ़ जाती कि एक प्रकार से कैंसर बन जाती है। ये जल्दी ही उनको विचलित कर देता है और वे सब चीजों के निर्णायक बन जाते हैं। ये मनोवृत्ति उन पर छा जाती है और हर बात में आलोचना करने लगते हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं जो आते हैं और कहते हैं, आप अपनी सभा में ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, और हमें क्या क्या करना चाहिए, वो अनेक सुझाव रखते हैं। असल में हमारे आसपास कुछ कलीसियाएं हैं जो ये सब क्रियाकलाप करते हैं। अगर वे चाहते हैं कि कलीसिया में ये सब बातें हो, तो वे उन कलीसियाओं में क्यों नहीं चले जाते जहां ये सब होता है। मेरे लिए परमेश्वर का अनुसरण करना और परमेश्वर की अगुवाई में चलना जरूरी है। अगर आप बहुत शोर शराबा या चिल्लाना और बहुत दिखावा चाहते हैं, तो यहां और चर्च है जहां इस तरह की बातें हैं। मैं आपको उनमें से एक ढूंढने की राय देता हूं। कुछ समय पहले मुझे एक स्त्री का पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था, मैं कई सालों से एक ऐसा चर्च की तलाश में थी जहां परमेश्वर का वचन सिखाया जाता हो। हम आपके चर्च में आए और हम बहुत आनंदित हुए कि वहां वचन सिखाया जाता है। लेकिन हमसे कहा गया कि हम अपने 2 साल की बच्ची को अपने साथ आराधना में नहीं ला सकते। अगर मेरी बच्ची नहीं आ सकती तो मैं भी नहीं आ सकती। उसने मुझे अनेक बातें सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी बच्ची को चर्च में आने की अनुमति नहीं दी गई। वो बहुत निराश थी। मैंने उसको पत्र लिखकर बताया कि यहां प्रत्येक रविवार को सुबह हमारे पास 2 साल और उससे कम उम्र के लगभग 180 से 220 बच्चे हैं। अगर ये सब बच्चे सभा में आए तो कोई भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा को नहीं सुन पाएगा। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उसको एक ऐसा चर्च ढूंढने में सहायता करे जहां परमेश्वर का वचन सिखाया जाता हो, जहां उसकी बच्ची का स्वागत हो। लेकिन मैं ये भी आशा करता हूं उस विशेष चर्च में जो उसे मिलता है, अगर उसकी बच्ची का स्वागत होगा तभी वो सभा को और परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुन पाएगी। हमारी सभा में बच्चों के ना होने के कारण यह है कि हम लोगों को ऊंचे स्तर पर वचन की शिक्षा देते हैं जिसमें उन्हें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बच्चों के अंदर बाहर आने जाने से, गीत की किताब उलटने पलटने से, बच्चों के रोने आदि से विघ्न या बाधा ना हो, इसलिए हम बच्चों को आराधना में नहीं बैठने देते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही करने का मार्गदर्शन दिया। यदि आपको ऐसी आराधना में जाना है जहां अपने बच्चे को गोद में बिठा सके कि आराधना में रोता रहे, तो ऐसे अनेक कलीसियाएं हैं जहां आप जा सकते हैं। वहां आपका स्वागत होगा। आप ऐसी एक कलीसिया खोज ले। ये मेरे लिए दिलचस्प है कि नए नियम में यीशु ने कहा था कि कैसे लोग उस नियम या व्यवस्था के चारों ओर थे जो कहता है कि तुम्हें अपने माता और पिता का आदर करना है, तुम्हें उन्हें श्राप नहीं देना है, और अगर तुम अपने अभिभावकों को या माता पिता को श्राप देंगे तो तुम मर जाओगे। अतः उन्होंने उस नियम में संशोधन कर दिया, जैसे कि मुझे इसराइल में किसी ने बताया, मैं गुरु से बात करूंगा, वो इसके आसपास का कोई तरीका बता सकते हैं। सबत के दिन आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है, लेकिन अब आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग सबत के दिन कर सकते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं है। वे हमेशा कोई न कोई समाधान खोज निकालते हैं। अतः वो कहते हैं, अगर आप अपने माता पिता को श्राप देने से पहले बता दे कि ये आपके भले के लिए है, ये आपकी अच्छाई के लिए है, मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि आप एक रेंगने वाली जू है। इसके बाद आप जो चाहो उनसे कह सकते हैं। जब आप ये कहते हैं ये आपके लिए एक उपहार है, ये आपकी भलाई और अच्छाई के लिए है, फिर आप जो चाहे कहे, ये व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देना है, धोखा देना है। किसी ने मुझे कुछ लिखा और हस्ताक्षर किए, अगापे, जिसका अर्थ है सब प्रेम। अब क्योंकि उन्होंने अगापे का हस्ताक्षर किया था, इसलिए वे सोचते हैं कि अपने लेख में हर प्रकार की घटिया बात और आलोचना कर सकते हैं, परंतु उनकी बातों में कुछ भी सप्रेम नहीं था। वो पत्र केवल आडंबर मात्र था। परमेश्वर के अभिषेक को छूना कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए, और दाऊद के मन में उसके लिए बड़ा सम्मान था। उसने शौल को नहीं छुआ। उसने कहा, परमेश्वर उसे संभालेगा। यही सही तरीका है। अगर वो परमेश्वर का सेवक है तो परमेश्वर उसे संभालेगा। पौलुस ने कहा, दूसरे मनुष्य का सेवक का न्याय करने या देखने वाले तुम कौन होते हो? वो अपने स्वामी के सामने चाहे गिरे या खड़ा रहे, परमेश्वर उसे खड़ा करने में सामर्थी है। अगर मैं आपकी नौकरी कर रहा हूं तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर की नौकरी कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति है। एक दिन मुझे उसके सामने खड़ा होना है और अपना और अपनी सेवकाई का हिसाब उसे देना है, इसलिए मुझे उसकी सुनना है, क्योंकि एक दिन मुझे उसके सामने अपना लेखा देना होगा। इसलिए दाऊद ने कहा, परमेश्वर उसे किसी न किसी तरीके से संभालेगा, परमेश्वर उसे मारेगा, वो खुद में हार जाएगा। मैं अपने हाथों को परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध तलवार उठाकर दोषी नहीं होना चाहता। अध्याय 26, 11 से लेकर पद 14 तक में, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिराने से भाला और पानी का झरी उठा ले और हम यहां से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की झरी को शौल के सिराने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद दूसरी परली ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था, और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? अब दाऊद दूसरी ओर दूर जाकर पुकारता है। उस देश के बारे में एक रोचक बात है कि वहां एक तरह की कुछ ऐसी विशाल ध्वनि तरंगे हैं कि आप मीलों दूर से भी सुन सकते हैं। जब हम हेरोदियन में थे, मुझे वहां के लोगों ने बताया था, वहां कुछ बच्चे थे जो लगभग 25 मील दूर खेल रहे थे। मैंने कहा, उन बच्चों को सुनो। आप उन्हें सुन सकते थे, आप उन्हें खेलते हुए एक दूसरे को बुलाते हुए सुन सकते थे। जब हेरोदियन के शिखर पर जा रहे थे, मैंने पहाड़ी के लगभग आधे रास्ते में कुछ गुफाएं देखी। मैं उत्सुक था कि उन गुफाओं में क्या होगा, अतः मैंने सड़क से हेरोदियन के शिखर पर जाने के बजाय हेरोदियन के किनारे के साथ उन गुफाओं को खोजने के लिए चलने लगा, जिन्हें मैंने हेरोदियन के किनारे बड़े जलाशय में पाया और कुछ दीवारों का मलवा पाया। लेकिन कुछ लोग ऊपर शिखर पर थे और मैं उनको आपस में बातचीत करते हुए सुन सकता था, जबकि मैं पहाड़ी के नीचे था। इसलिए मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। हम 400 फीट से ज्यादा दूरी पर भी एकदम साफ आवाज सुन रहे थे। वहां वातावरण में कुछ ऐसा है जिससे आवाज बहुत आराम से आगे जाती है, जिसे आप असल में मीलों दूर सुन सकते हैं। दाऊद दूसरे पहाड़ पर चला गया और वहां से चिल्लाया। आप उसे सुन सकते थे। उस वातावरण में आवाज या ध्वनि इतने अच्छे तरीके से यात्रा करती है, ये सच में आश्चर्यजनक है। लोग आश्चर्य करते हैं कि यीशु ने इस दुनिया में 5,000 लोगों से कैसे बात की थी, लेकिन जिस तरह की ध्वनि तरंगों का जाल वहां है, इसलिए वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ से बिना माइक और लाउडस्पीकर के बात करने में परेशानी नहीं होती है। ये सचमुच कुछ ऐसा है जो बहुत अद्वितीय और दिलचस्प है। मुझे ये हमेशा बहुत रोचक लगता है। अतः दाऊद उस पहाड़ के ऊपर गया और वहां से पुकारा, अबनेर। अबनेर ने कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है। अध्याय 26 पद 14 से लेकर पद 16 तक में, और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इसराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया है वो अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का भाला और पानी का झरी जो उसके सिरहाने थी, वे कहाँ हैं? अतः दाऊद शौल के प्रधान सेनापति अबनेर को एक प्रकार से फटकार रहा था। कह रहा था, तुमको पता है कि तुम्हारा काम राजा की सुरक्षा करना है, और तुम अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कोई राजा को मारने आया और तुम गहरी नींद में सोए पड़े थे? देख, राजा का भाला और पानी की सुराई कहां है? अध्याय 26 पद 17 से लेकर पद 18 तक में, तब शौल ने, जो जरूर उसी वक्त नींद से जागा होगा, दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हां मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई है? मैं समझता हूं कि दाऊद एक वाक्य हमेशा बोलता था, मैंने क्या किया है। हमेशा कहता रहता, मैंने क्या किया है। लगता है वो हमेशा परेशानी में पड़ जाता था, और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमेशा यही कहता था, मैंने क्या किया है। अतः जब वो छावनी में गया था, जहां उसके भाई लोग फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, और गोलियात जब बाहर निकला और दाऊद ने पूछना शुरू किया था, हे तुम लोग छिप क्यों रहे हो? तुम में से कोई उसे लड़ता क्यों नहीं है? इसके भाई उसे घर जाने को कह रहे थे, तब भी उसने यही कहा था, हे मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल कुछ प्रश्न ही पूछे थे। यहां शौल के साथ, मैंने क्या किया है जो तुम इस तरह मेरा पीछा कर रहे हो? अध्याय 26 पद 19 से लेकर पद 21 तक में, अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वो भेंट ग्रहण करे, हमारा आपस में मेल मिलाप हो। परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने कहा, जा पराए देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इसराइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का आहार करे। शौल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौटा, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि के अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब यहां शौल का अंगीकार है, जैसा दाऊद का तकिया कलाम था, मैंने क्या किया है, वैसे ही शौल का तकिया कलाम था, मैंने पाप किया है। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने सिर्फ एक सच्चाई को बताया। ये एक तरह की त्रासदी है। आज बहुत लोग कहते हैं, ओह मैंने पाप किया है, लेकिन वे बदलते नहीं हैं। पश्चाताप का अर्थ है मन परिवर्तन। अतः सिर्फ ये कहना काफी नहीं है ओह मैंने पाप किया है। परमेश्वर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अपने पापों से मुड़ना। यहां शॉल फिर से और पहले भी बहुत बार जब भी वो शमूएल के सामने आया उसने कहा ओ मैंने पाप किया है, लेकिन उसमें मन फिराव कहीं नहीं दिखता था। मैंने पाप किया है, मैंने मूर्ख बनाया है, मैंने अत्यधिक अपराध किए हैं, ये शॉल का अंगीकार है। हां ये बहुत दुखद अंगीकार है, ये सच है। उसने अपने सारे जीवन में लोगों को मूर्ख बनाया। वो ऐसा आदमी था जिसे परमेश्वर ने बहुत सारे प्राकृतिक गुण, सामर्थ और हर प्रकार के अच्छे मौके दिए थे, लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जिसने परमेश्वर की सेवा के सारे मौके गवा दिए। वो परमेश्वर के काम करने में सामर्थी था पर हार गया। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे इसराइल पर राजा होने के लिए जरूरी था, परंतु वो प्रशंसा और घमंड में ऊंचा उठने लगा, मूर्ख बनने लगा और अत्यधिक पाप करने लगा। अतः उसका जीवन वृत्तांत है, मैंने पाप किया है, मैंने मूर्ख बनाया है, मैंने अत्यधिक अपराध किए हैं। अध्याय 26 पद 22 से लेकर पद 25 तक। दाऊद ने उत्तर देकर कहा हे राजा भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषेक पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज तेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे और वो मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शॉल ने दाऊद से कहा हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। शॉल अंदर से जानता था कि एक दिन दाऊद को सिंहासन पर बैठना है। वो सिंहासन को बचाने की और अपनी संतान को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने हृदय में वो जानता था कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया है और दाऊद परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा था। तभी शॉल ने कहा हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। अध्याय 26 पद 25 में आगे लिखा है, तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शॉल भी अपने स्थान लौट गया।